مومنین, سورہ انعام کا سلسلہ جاری و ساری ہے. جو آیت پڑھنے کا شرف حاصل کرا میں نے وہ 94 آیت ہے 94. اور تم ہمارے پاس اسی طرح تنہا آئے جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا. جو کچھ ہم نے تمہیں عطا فرمایا تھا وہ تم پیٹھ پیچھے چھوڑا ہے, اور ہم تمہارے ساتھ سفارش کرنے والے بھی نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم سمجھتے تھے کہ تمہارے شریک ہیں. تمہارے تعلقات منقطع ہو گئے, تمہاری خیال منصوبے گم ہو کر رہ گئے. اللہ اکبر, یہ بڑی مشہور آیت ہے, وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَاكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ أَنَّكُمْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ شُرَكَاءَ وَلَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. یہ آیت بڑی عجیب آیت ہے. جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا ویسے تم اکیلے پھر سامنے آ گئے یا میرے مولا, اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا وہ تم سب پیچھے پیچھے چھوڑ کے آ گئے, اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارش بھی نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم خیال کیا کرتے تھے وہ تمہارے شریک ہیں. آج تمہارا سارے تعلقات منتقا ہوگا, جو تمہارے خیالی منصوبے تو سب جاتے رہے. جیسے پہلے اکیلے آئے تھے دنیا میں ایسے اکیلے جائیں گے, کچھ بھی نہیں رہے گا, کچھ بھی نہیں رہے گا. یہ سارے دنیا کے چکر, یہ سارے جو سب کچھ یہی رہ جائے گا, صرف اعمال جائیں گے انسان کے, اور اللہ کے سامنے فردہ فردہ کھڑا ہو جائے گا. سورہ مریم میں آپ جا کے دیکھیں فردہ فردہ آدمی اکیلا اکیلا اللہ کے سامنے حساب لینے آئے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انعام میں یہی فرمایا ہے, تم فردہ فردہ میرے پاس آؤ گے, سارے تمہارے تعلقات پیچھے رہ جائیں گے. جن کو تم سوچتے تھے تمہارے جو شرکا تھے تمہارے, وہ شرکا کون تھے؟ بھائی سفارشی بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک سفارشی وہ جو کہ پولیتھیز بنایا کرتے تھے, جو بھی ہوتے ہیں ان کے بوت کہ یہ ہماری اللہ کے سامنے سفارش کریں گے. ان شرکا کی اللہ نے بات کری ہے. ہاں جو اولیاء اللہ ہیں وہ شفاعت کی الگ ہیں, ان کی بات اس وقت نہیں ہو رہی ہے. وہ اولیاء اللہ وہ بھی اللہ کے عز سے سفارش کریں گے, وہ بھی اللہ کے عز ہیں. جس سے اللہ راضی ہوگا اسی کی بھی صرف سفارش کر پائیں گے, ہر ایک کی تو وہ بھی نہیں کر پائیں گے. تو ہر باغ ڈول اللہ کے ہاتھ میں, ملک الملک کے ہاتھ میں ہر باغ ڈول ہے, کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. مالکی امید دین ہے, بس ہم کو اکیلا کھڑا ہونا ہے پروردگار کریم کے آگے. تو یہ دنیا کے سارے جتنی بھی چیزیں ہیں, وسوسے ہیں, جتنی بھی چیزیں ہیں, ہم کو کھینچ کے رکھتی ہے, ہر چیز کھینچ کے رکھتی ہے ہم کو. اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہت کچھ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ہم سب کی بازگش, پوری کائنات کی بازگش خدا کی طرف ہے. انسانی ہر چیز کی, ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے خدا کی ذات کے. فنا ہو کے خدا کی طرف جائیے, ہر چیز فنا ہے, سب خدا کی طرف جانے والے. ان اللہ فالق الحب و نوا یخرج المیت من الحیت و مخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون. بے شک خدا ہی دانے اور گٹھلی کو شگافتہ کرتا ہے, وہ جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے, اور وہی بے جان کا جاندار سے نکالنے والا ہے. یہی تو تمہارا خدا ہے, تم پھر کدھر لے کے جا رہے ہو؟ کیا میرے بھائی, ان اللہ فالق الحب و نوا, بے شک خدا ہی دانہ اور گٹھلی جو ہوتی ہے اس کو پھوڑ کے درخت نکالتا ہے. کہ دیکھنا تم نے روز دیکھ لیا کرا کرو نا, تم کہاں چاہتے ہیں تمہارے باغ میں جا کے دیکھ لو. یخرج الحی من المیت, حی مطلب بے جان سے جتنا کرتا ہے, کہاں سے بے جان گٹھلی, بے جان دانہ, اس سے شاداب درخت نکالتا ہے, اس شاداب درخت سے پھر بے جان گٹھلی نکالتا ہے. یخرج الحی من المیت مخرج من المیت الحی ذالکم اللہ فانا تؤفنون, یہ تو تمہارا پروردگار ہے. لیکن کدھر پروردگار, تمہارے باغ میں جا کے دیکھ لو بھائی. فانا تؤفنون فالق الاصباح وجعل لیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم. سبحان اللہ, وہی صبح کو پھاڑ نکالتا ہے اور اسی نے آرام کے لیے رات اور حساب کے لیے سورج اور چاند بنا ہے. یہ غالب اور دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے. فالق الاصباح ہے, صبح سے اصباح, صبح کو پھاڑ نکالتا ہے, رات کے اندھیرے صبح کی کو پھاڑ نکالتا ہے. آپ صبح کے جب کھڑے ہو کر دیکھیں صحیح, آپ سورج جب شفق پھوٹتی ہے, فالق الاصباح, فالق پھاڑو کہتے ہیں اندھیرے کو پھاڑ کے صبح نکالتا ہے. فالق الاصباح ہے, فعل وجعل لیل سکنا, اور رات کو اس نے آرام کے لیے بنایا ہے. आप इनकी इस आयत में नूरानी देखें ना, आप रोएंगे। ये आयत आप सुबह में सुने जब फजर से होने वाली, और ये कुरान लगा दें और ये सुने आप, फालिक अज़बा जलल लल सगन व शम्स व कमर हुस्बाना, और शम्स व कमर को हिसाब के बना हुस्बाना। ये मौला मुत्तकी ने फरमाया कि कुरान के अंदर जो अल्फाज अल्लाह ने रखे नहायत खूबसूरत रखे। हुस्बाना, आप सोचिए खूबसूरत किस लफ्ज की, हुस्बाना, दालिक तकदीर अज़ीज़ुल अलीम। फिर उसने दो खूबसूरत नाम रखे, दालिक तकदीर अज़ीज़ुल अलीम, ये मेरे मुकर्रर की, ये दाना, ये गालिब और दाना के मुकर्रर की अंदाज है, दालिक तकदीर अज़ीज़ुल अलीम। सुभान अल्लाह। अब ये जो ये सुबह को फाड़ता वो है, दालने को फाड़ता वो है, गुटली को फाड़ता वो है, ये अल्लाह है, सुभान अल्लाह है। तो इसके बारे में रात को मूजिब आराम बनाया, उसके बारे में मौला की हदीस है, समाप्त फरमाए। बार बार अल्लाह सुभान अल्लाह कुरान में कहा, हमने नींद को तुम्हारे आराम के लिए बनाया, रात को तुम्हारे आराम के लिए बनाया। ये चीजें रोज की निशानी अल्लाह सुभान अल्लाह की। रोज हम दरख्त को निकलता देखते हैं, रोज हम रात को सोते हैं, रोज हम रात को देखते हैं, रोज सुबह को निकलता देखते हैं। ये दिन भर के नूर है अल्लाह के। अगर हमको ना दिख रहे तो हम गुमराह हैं, हमको अगर नहीं दिख रहे तो हम गुमराह हैं। हमको कुछ नहीं दिख रहा, हम अंधे बहरे के गूंगे हो चुके हैं, क्योंकि हमको ये सब नहीं दिख रहा। अल्लाह दिखाता है, कुरान पढ़ेंगे तो दिखेगा, नहीं कुरान पढ़ेंगे तो नहीं दिखेगा कुछ। तकुम नुजूम लतहतु बिहा फी ज़ुलमाती बर्रि वल बहर कद फस्सलना आयात लिक़ौमी यअलमून। और वही तो जिसने खुश्क और समंदर की तारीकियों में सितारों को तुम्हारे लिए रास्ता मालूम करने का जरिया बनाया। जो इल्म रखते हैं हमने उनके लिए अपनी आयतें वाज़े अंदाज से बयान कर दी हैं। कहा कि वो तो खुदा है जिसने के अंधेरों में, कहा के अंधेरों में दो तरह के अंधेरे हैं, एक तो होता है समंदर का अंधेरा और एक होता है जमीनी अंधेरा। ये अंधेरे कब होते हैं, जब आप उस वक्त अल्लाह ने कहा कि मैंने इन सितारों को तुम्हारा लतहतु बिहा फिर ज़ुलमात ताकि तुमको वो रास्ता दिखाएं, सितारे तुम्हें रास्ता दिखाएं। अब आप सोचें कि हजारों साल से समंदर में किश्तियां चल रही हैं, पहले तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होता था, सिर्फ सितारों से चलती थी कश्तियां। ये अल्लाह ने बड़े बड़े सितारे लगा दिए लैंप पोस्ट, और उससे चलते थे, ना कि वहां बल्कि जंगलों में जो लोग सफर करते थे या सहराओं में सफर करते थे, कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ सितारे दिखते थे। अब तो हमको ये सब चीज़, हमको अभी आज समझ में नहीं आती कि हमको दूसरी चीज़ मालूम पड़ गई है। अरे हजारों साल से क्या हो रहा दुनिया में, यही तो हो रहा है, सितारे ही रास्ता दिखा रहे थे, ये सितारे रास्ता दिखा रहे थे। सितारे यहाँ तक कि आप बल्कि कहीं जाने का रास्ता, बल्कि ये भी बताते हैं काबा किधर है, नमाज किसे पढ़ेंगे रात में जंगल में, ये सितारे बताते हैं सारे रास्ते, ये सितारे बताते हैं। अल्लाह ताला ने सितारे बनाए इसीलिए। अब आप देखना तो सितारे हैं, लेकिन अगर आप उसको जाके आप किसी साइंटिस्ट से पूछो सितारे जो दिख रहे हैं ये इनके आसपास क्या क्या बना, तो उसके आसपास लाखों चीज़ें आसपास घूम रही हैं, लाखों ये सब गैलेक्सी क्या क्या नहीं हुआ आपको समझ में नहीं आता है। लेकिन अल्लाह ने बनाया के लिए, सिर्फ हमारे डायरेक्शन के लिए। हम सोचते हैं वो गवर्नमेंट एक बड़ी चीज़ बना दी है, हम बड़े खुश होते हैं, वाह क्या बड़ी गवर्नमेंट है फिरौन की। अरे फिरौन की गवर्नमेंट देख रहा हो और खुश हो रहा, अरे वो सितारा देखो जो अल्लाह ने बना के रखे तुम्हारे लिए ताकि तुम रस्ते पाओ। हम नाशुक्र लोग हैं, हमको समझ में आता है अल्लाह ने हमारे लिए क्या क्या बना के रखा। तो ये भी हदीस में है कि सितारों से मुराद आले मोहम्मद भी हैं, दुरूद पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वा आले मुहम्मद, आले मोहम्मद ने भी रास्ता दिखाया। فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَعْدًا قَدْ فَصَّلْنَا آيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ। وہی تو جس نے تمہیں ایک شخص سے پیدا کیا پھر ہر ایک کے لیے جائے قرار اور سوپنے کی جگہ مقرر کر دی، ہم نے سمجھ رکھنے والوں کے لیے نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا کیا کہہ رہا کہ ہم نے ایک شخص سے تم کو پیدا کرا، آدم علیہ السلام سے ہر ایک کو پیدا کرا، پھر ہر ایک کے لیے اس نے ایک ٹھہرنے کی جگہ مقرر کری ہے، مستقرًا ومستعدًا۔ एक ठहरने की जगह कौन सी, मुस्तकर, मुस्तादा सोपने की जगह, ठहरने की जगह मतलब परमानेंट प्लेस, सोपने की जगह टेम्परेरी प्लेस, दो तरह की जगह अल्लाह ने मुकर्रर करी है। कद फसलना आयत लिक़ौमी यफ़हून, ये हमने समझने वालों के लिए आयत खोल के बयान कर दी है। यफ़हून बना फिक्र से, गहरा समझने वालों के लिए बातें समझ, गहरे समझते हैं। पहली जो आयत आई थी सितारों की वो आयत थी यालमून के लिए, समझने वालों के लिए, एक लेवल है इल्म वालों का, लेकिन ये और गहरा लेवल है।
यफ़हून मतलब फक समझ, गहरी समझ के लोगों के लिए हमने आयतें बयान कर दी हैं। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने, क्योंकि इंसान की खिलकत और उसकी रूहानियत को देखने के लिए अकल चाहिए। एक अल्लाह ने कहा मैं आदम अलैहिस्सलाम से तुम सबको बनाया है, फिर मैंने तुम्हारे दो जगह मुकर्रर कर लिए, एक ठहरने की और एक सौंपने की। ठहरने की जगह से मुराद है, आइमा तारी ने फरमाया ठहरने से मुराद इस तरीके से मीज़ा ने जो कहा है, मीज़ा ने खुल के समझाया कि जो हम जो लोग पैदा हो चुके हैं वो ठहरने वाले लोग हैं, जो हम पैदा हो चुके हैं जमीन में फैले हुए ठहरने वाले हैं, मुस्तकर हैं। मुस्तादा कौन से हैं, जो छोपे हुए हैं, जो 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 अपने वालिदैन के सुल्म में मौजूद हैं, सिर्फ अभी बाहर नहीं आए, वो लोग सौंपने वाले लोग हैं, सुल्म में जो है। एक दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। तो उनकी एक लंबी हदीस है, उसके अंदर उसका लपेल हुआ यह है कि ठहरने से मुराद ये है कि जिसका ईमान, जिस मोमिन का ईमान आखिर तक रहा है वो ठहरने वाला मोमिन है, तो गहरी बात हो गई। और जिसका ईमान वक्त से पहले उठा लिया गया वो सोपने वाला ईमान है। तो जो भी अल्लाह पर झूठ बांधेगा अल्लाह उससे उसका ईमान खींच लेगा, अल्लाह भी जिसने झूठ माना उससे उसका ईमान सब कर लिया जाएगा। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि ठहरने का मुकाम माँ का शिकम है और सोपने का मुकाम सुल्ब है बाप का। ये भी एक दूसरी हदीस है इस बारे में। तो हमको भाई जब हम ये आयत पढ़ते हैं तो हमको ये हदीसें याद आने लगती हैं कि आखिरी ज़माने के अंदर मोमिन सुबह ईमान लेके जाएगा, शाम को आएगा तो ईमान छोड़ के आएगा। तो ये वक्त आ गया है, और जितना आप अल्लाह पे झूठ बांधोगे उतनी जल्दी अल्लाह आप पे ईमान ले लेगा। आज हमारे क्या हमारे दीन को सब खोल खोल के बताया जाता है कि दीन में कुछ दीन से कुछ सही सही दीन पढ़ाया जाता है क्या? जहाँ सही सही दीन पढ़ा जाता है वहाँ पर सही ईमान रहेगा, जहाँ सही दीन नहीं बताया जाता, कुरान को खोल खोल के नहीं बताया जाता, शरीयत ठीक से नहीं बताई जाती, और अपने हिसाब से मनगढ़ंत बात करते हैं उनके बारे में आप खुद सोच सकते हैं उनके ईमान का क्या होने वाला है, उनके ईमान का क्या होने वाला है। अल्लाह बचा, ये आखिरी ज़माना है, सुबह लेके ईमान जाएगा, वापस आएगा तो ईमान गायब होगा। छठे इमाम की हदीस है कि जब हमारे आएंगे कायम तो शिया लोग अपना ईमान छोड़ देंगे और सितारा परस्त लोग ईमान में दाखिल हो जाएंगे। आज होता दिख रहा है, दूसरे लोग ईमान ला रहे हैं, और दूसरे लोग ईमान ला रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं, और हमारे भाई दीन में शक कर रहे हैं कि कौन से इमाम मेहदी कब आने वाले हैं, कुरान से दूर हैं, अपनी ज़िंदगी में मगन है। तो ये ज़माना हम देख रहे हैं। आगे की आयत में फरमाता है वह लजी अनजल मिन समाई मा फअखरजना बिही नबात कुल शयइन फअखरजना मिन्हुम खदीरन नुखरिज मिन्हुम हब्बन मुतराकिबा वमिनल नखली मिन तलई हाकिन वानु दानियतिन व जन्नातिन मिन आनाबिन व जैतून व रुम्माना मुश्तबिहु वगैरह متشابها انظر الى ثمر اذا اسمر وينعي ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون। बड़ी इस खूबसूरत आयत है, ये आयत की जो खूबसूरती है बयान की बाहर है। अल्लाह सुभान का नूर बागों में और सब दूर दिखने लग रहा है, और वही तो जिसने आसमान से बारिश बरसाई, फिर हम उसके ज़रिए हर किस्म के नबातात उगाते हैं, फिर उससे हमने हरी भरी टहनियाँ निकालते हैं, फिर हम उनसे तेबते जुड़े दाने निकालते हैं, सुभान अल्लाह, और खजूर के शगुफों से फलों के लटके हुए गुच्छे, खजूर के शगुफों से फलों के लटके हुए गुच्छे और अंगूरों और जैतूनों अनारों के बागात जिनके फल एक दूसरे से सूरत में मिलते जुलते हैं भी हैं और जुदा जुदा भी, जब ये फलें और पके तो उनकी कैफियत पर गौर करो, उन चीज़ों से साहिब ईमान के लिए बहुत सारी निशानियां मौजूद हैं। या मेरे मौला, सुभान अल्लाह, आप देखेंगे इसके अंदर अल्लाह सुब्हान व तआला ने कहा मैंने तो है जो आसमान से बारिश नाजिल करी, फिर उससे हम तरह हर तरह की नबादात उगाते हैं, उस नबादात में तो सारी वेजिटेशन तो है लेकिन इंसान भी है, सभी उस पानी से पूरी पूरे जितने भी लिविंग क्रिएचर हैं उस पानी से पलते हैं। उसमें आप इंसान ले लें, उसमें आप हैवान ले लें, उसमें आप दरख्त तरिंद चरित सब ले लें, सबकी लाइफ का सोर्स वाटर है, उगते हैं। फिर उससे हमने हर तरह और फिर नबातात उगाते हैं, उससे हमने हरी भरी टहनियां निकालते हैं। अल्लाह बता रहा है टहनियां निकलती हैं पहले, फिर उनसे तह बहते जुड़े जुड़े दाने निकालते हैं। अब आप देखें भुट्टे को देखें तह बहते जुड़े दाने निकालते हैं, भुट्टे को देखें आप तह बहते जुड़े एक हफ्ता जुड़ दिन सुबह अल्लाह सुबह तला ने दाने देखें आप हर तरह दाने देखें तह बहते जुड़े दाने निकालते हैं। और खजूर के शगुफों से फलों के लटके हुए गुच्छे, लटके हुए गुच्छे। अल्लाह ताला ने खजूर को दो तरह का जिक्र करा, एक तो खजूरें बयान करी जो ऊपर वाली होती हैं, और ये क्या है इसमें खुसूसन अल्लाह का है कि लटके हुए गुच्छे जमीन से जो लटक रहे हैं, क्यों लटक रहे हैं, ताकि किसी को आराम से उसको तोड़ लें। दो तरह की खजूर अल्लाह ताला ने बयान करी, इसके अंदर ये खूबसूरती है लटके हुए गुच्छे जाके जमीन से तोड़ लें आप, लटके हुए गुच्छे और अंगूरों जैतून और अनारों के बागात जिनके फल एक दूसरे से सूरत में मिलते हैं लेकिन जुदा जुदा भी हैं, मुश्तबी व गैर मुतशाबिया, मुश्तबी मतलब मिलते जुलते हैं वो गैर मुतशाबिया न भी मिलते हैं, तो न मिलने की तफसीर यह है कि उनके टेस्ट अलग अलग होते हैं, दिखते तो एक जैसे फल हैं लेकिन गैर मुतशाबिया मुश्तबी व गैर मुतशाबिया। वो यानी ये जब इन फलों को देखो, जब ये फले और पके इन नफीजारिक मिला आयत लिए कौमी यू मिनोन, इसके अंदर जो लोग ईमान लाते हैं उनके लिए आयतें मौजूद हैं अल्लाह करीम की आयत, इतनी खूबसूरत आयत है, इतनी खूबसूरत आयत है कि बयान के बाहर। अब इसमें कौमी या आलम उनका अल्लाह ने जो ईमान लाते उनके लिए पहले हम लोगों ने आयतें क्या पढ़ी थी, यफ कानून की पढ़ी थी आयत, ये जो आयत है इन नफी जालिक आयत लिखो कौमी यू मिनून चाहता हूँ ये कौम माजर चाहता हूँ इन नफी जालिक आयत लिख कौमी यू मिनून, ये इसमें आया है इस लंबी आयत में ही आया है। यू में जो लोग ईमान ला उनके लिए निशानियाँ अल्लाह ने खोल के बयान करी हैं, क्यों इसमें सिर्फ यू मिनून आया है, मीज़ान ने बताया इसमें यू मिनून इसलिए ईमान वालों के लिए निशानियाँ हैं। पहली जो आयत आई थी वो यालमून के लिए आई थी, जब स्टार की आयत आई थी तो यालमून था, वो फिर जब आया नफसिन वाहिदा तो आया यफकहून आया, याद है ना नफसिन वाहिदा की आयत पढ़ी थी पहले, उसमें यफकहून आया था, उस सितारों की आयत थी उसमें यालमून आया था, और इसमें आया यूमिनून आया। क्यों आया यूमिनून, इसलिए आया कि ये चीजें बड़ी आसानी से समझ में आती हैं मोमिनीन को कि अगर दाने निकल रहे हैं या बागात हैं खजूर के अंगूर के है? तो आपको आसानी समझ, तो ये मोमिनों के लिए आयतें हैं। जब जब सितारों की बात करते हैं तो आलमून का जो इल्म वाले उनके लिए आया था ये मेरी, क्योंकि इल्म वाला समझ सकता है कि सितारों की क्या हैसियत है, वो किस तरीके से वो हिदायत करते हैं। फिर जब नफसिन वाहिदा का आया और मुस्तकर मुस्तौदा का आया तो कहा ये कौमी यफ़हून जो गहरे समझ वाले हैं उनके लिए आए थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अलग अलग दर्जा से आयतों को नाजिल कराया ताकि हर किस्म के इंसान को आयतें समझ में आए। दुरूद पढ़ते हैं अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खलकहुम व खरकू लहू बनीन व बनाती बिगैर इल्म सुभानहू व तआला अम्मा यसिफून, और उन लोगों ने जिन्हों को खुदा का शरीक बनाया हालांकि उसी ने उन्हें खल किया है, वो बेजाने बूझे अल्लाह के लिए बेटे और बेटियां तैयार कर दी, वो उन बातों से पाक है और वो उससे बुलंद और बाला है जो उसकी नस्बत बयान करते हैं। खुदा बंदा करीम अपनी तौहीद की बात कर रहा है कि उन्होंने जिन्नात को उसका शरीक बना दिया, शरीक बनाया हालांकि उसी ने उनको खल किया है, वो बेजाने बूझे उसके लिए बेटे और बेटियां तैयार कर दी, वो उस बात से बहुत बुलंद और आला है जो ये उसके बारे में बयान करते हैं। इसके बारे में ये है कि मुशरिकीन का एक कहना था कि जो जिन्नात हैं अल्लाह ने जिन से शादी करी माजल्ला, और उस जिन औरत से शादी करी खुदा आउज़ बिल्ला, और फिर उससे फिर उसके बेटा बेटियां हुए उसी से फरिश्ते पैदा हुए, इसलिए कुरान में अल्लाह सुब्हानहू ने ये भी कहा है कि ये लोग कहते हैं कि फरिश्ते खुदा की बेटियां हैं। इस तरह की फजूल बातें अल्लाह के बारे में बयान करी, इसी तरह की फजूल बातें ईसाइयों ने बयान करी कि कैसे ईसा अल्लाह के बेटे हैं, मतलब इन्होंने कोई मतलब जिस तरीके से ये मुशरिक बयान करे इसी तरह ये इन्होंने अहले किताब ने भी वही फजूल बातें करना शुरू कर दी। खलकहु खरकु लहू, बनी ने बना दी बगैर इल्म, सुभान व तआला अम्मा यसिफून, और वो उससे बहुत बुलंद और पाला है जो उसकी निस्बत बयान करते हैं। बदयो समावादी अर्द अन्ना यकून लहू वलदू वलम तकू लहू साहिब व खलक कुल्ल शय व हुआ भी कुल्ल शयन अलीम। वो तो आसमान और जमीन का ईजाद करने वाला है, उसके औलाद कैसे हो सकती है जबकि उसकी कोई शरीक हयात ही नहीं है। उसने हर चीज को पैदा किया है और वो हर चीज का इल्म रखने वाला है। अल्लाह सुब्हान तआला खुद की बात कर रहा है। कितनी खूबसूरत आयत है, तौहीद की आयत है। बादियो समाद अर्द, तो क्या मतलब है इस आयत की बारे में पांच इमाम फरमाते हैं कि क्या मुराद है बदी से, तो मौला फरमाते हैं कि बदी से मुराद ये है कि अल्लाह सुब्हान तआला अपने इल्म से उस चीज को पैदा करे जिसका कि कोई पहले कोई मिसाल नहीं हो, ईजाद करी हो, पहली बार आई हो, जो उसको कहते हैं बदी। इसको अल्लाह सुब्हान तआला ने जो कायनात बनाई थी उससे पहले कोई कायनात नहीं थी, इंसान बनाया उससे पहले कोई इंसान है, हर चीज अल्लाह ने पहले बनाई पहले थी ही नहीं है, अल्लाह ताला ने खुद ईजाद करी। बदियो समाद अर्द अन्ना यकुन लहू वलद, उसके बेटा कैसे हो सकता है, बलम तकुल लहू साहिबा, जबकि कोई उसकी शरीक हयात ही नहीं है। वह खलक कुल्ल शय, मैंने हर चीज को पैदा करा है, वह हुआ भी कुल्ल शयइन अलीम, वो हर चीज का इल्म रखने वाला है, उसकी कैसे औलाद होगी। देखें आप जो आयतों से सिलसिला देखें, बड़ी रूहानियत की आयत है। अल्लाह सुब्हान तआला पहले बताया कि किस किस तरह से वो है फालिकुल इस्बाह करके, किस तरह से सुबह को फाड़ता है, फालिकुल हब्बे नवा है दाने गुठली को फाड़ता है, फिर उसने सितारों से अपना नूर दिखाया, फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हान तआला ने बागों से अपना नूर दिखाया, उसके बाद अल्लाह सुब्हान तआला अपना नूर दिखा रहा है। इस तरह से बदी उस समाद अर्द करा, पूरी कायनात मैंने पैदा करी, ईजाद करी मैंने अन्ना नकुल वलद वलम तकुल साहिब, उसके औलाद कैसे हो सकती है जबकि शरीक हयात ही नहीं है। वह खलक कुल्ल शय, वह हुआ भी कुल्ल शय अलीम, वो हर चीज का इल्म रखने वाला है। आए जिसकी शादी होती है इसकी बीवी होती है, ईसाइयों से बहस है, जिसकी शादी होती है जिसकी बीवी होती है वो बाप बनता है अल्लाह सुब्हान, और जिसके पेट में से कुछ चीज निकलती है वो कल माँ होती है, जिसके बदन में से कुछ निकले वो वालदेन में से होते हैं। अल्लाह का ना कोई बदन है ना अल्लाह की कोई शरीक हयात है अल्लाह, तब जाके आप वालदेन बनते हो। अल्लाह सुब्हान ने कहा कि अल्लाह के लिए बेटे और बेटियां खड़ी कर दी, हालांकि उससे बहुत बुलंद और बाला है, बुलंद और बाला अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा, बुलंद और बाला है सुब्हान तआला अम्मा यसिफून, बुलंद और बाला है। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हान तआला फरमाए, बहुत खूबसूरत आयत है, ज़ालिकुम अल्लाह रब्बुकुम ला इलाहा इल्ला हु खालिक कुल्ल शयइन फअबुदू व हुवा अला कुल्ल शयइन वकील। अल्लाह सुब्हान तआला ने फिर समझाया, ये तो खूबसूरत ये तौहीद आयत है, अल्लाह सुब्हान तआला खुद को समझा रहा है। अब तर्जुमा क्या है, इन्हीं औसाफ का मालिक अल्लाह तुम्हारा रब है, नहीं ये कोई माबूद सिवाय उसके, उसी ने हर शे को खल्क फरमाया है और तुम उसी की इबादत करो और वो हर शे पर निगरान है। ज़ालिकुम अल्लाह रब्बुकुम, ये तुम्हारा ये औसाफ वाला तुम्हारा रब है, ला इलाहा इल्ला हुवा खालिक कुल्ल शै, खालिक कुल्ल शै हर चीज का खल्क करने वाला है, फाबदू तो उसी की बात करो, वो हुआ अला कुल्ल शैइन वकील और हर चीज का निगरान है, हर चीज का निगरान है। अब निगरान से मुराद ये है कि उसकी कोई कोई फिजिकल शेप नहीं जिससे वो निगरानी कर रहा है, वो किसी शक्ल और सूरत में निगरानी नहीं कर रहा है, इसलिए मीजान कहते हैं कि इसलिए अल्लाह ताला दूसरी आयत आगे की आयत में बयान कर रहा है, ला तुद्रिकुल अबसारु वो युद्रिकुल अबसारु वो हुआ लतीफुल खबीर, निगाहें उसका इदराक नहीं कर सकती, वो निगाहों का इदराक कर सकता है, वो बारीक बीन और खबरदार है। मतलब निगाहें उसको देख नहीं सकती हैं लेकिन वो निगाहों को देख लेता है, वो बारीक बीन और खबरदार है। बारीक बीन से ये है कि इतना लतीफ़ है कि वो अंदर और बाहर सब तरफ चले जाता है, लतीफ से मुराद इतनी बारीक पेनी चीज है कि इसके लिए बाहर और अंदर बराबर होता है, सब दूर से वो चले जाता है, बाखबर हर चीज से। निगाह उसका इदराक नहीं कर सकती, मगर वो निगाहों का इदराक कर सकता है और वो बारीक भी और खबरदार है। तो इसके बारे में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दुरूद पढ़ते हैं अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका मतलब क्या है कि वो निगाहें उसका इदराक नहीं कर सकती, इसका मतलब ये कि न कि आँख की आँख बल्कि दिल की आँखें भी उसका इदराक नहीं कर सकती, ना हमारा दिमाग उसका इदराक कर सकता कोई भी। इसीलिए हमको चाहिए हम नज़ूल बजाकर पढ़ा करा करें। मौला मुत्तकीना ने बार बार फरमाया कि खुदा की ज़ात ऐसी है कि कोई उसको अपने अंदर समझ नहीं सकता। इसीलिए रसूल अकरम फरमाते हैं कि जब तुम खुदा में गौर करो तो खुदा की मखलूक में गौर करो, खुदा में गौर मत करो, देख जाओगे तुम्हारे बस की बात नहीं, किसी इंसान के बस की बात नहीं खुदा की जात एसेंस में कोई गौर व फिक्र कर ले, क्योंकि वो सबसे बालातर है, हम जो सोचते हैं उससे बहुत बालातर है वो। सुभान अल्लाह अम्मा यसिफून, वो हर चीज से बाला और बरतर है। अब इसके अंदर थोड़ी बहस है जो मीजान ने करी है, ज़ालिकुम रब्बुकुम, ये उसका वाला तुम्हारा रब है, इसकी बहस मैं कर देता हूँ थोड़ी देर। मीजान ने बहुत लंबी बहस करी है कि कायनात को अल्लाह सुब्हान तआला ने बनाया है, वो कायनात को इस तरीके से बनाया कि उसमें हर चीज़ जुदा जुदा दिखती है, हर सिस्टम अलग अलग दिखता है, जानवरों का सिस्टम अलग है, सितारों का सिस्टम अलग है, कायनात का हर सिस्टम अलग अलग है, लेकिन जब हम गौर करते हैं तो मालूम पड़ता है कि सारे सिस्टम एक दूसरे से मिले जुले हैं और उन सबको मिला जुलाने वाला खुदा करीम है। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी शे जब वजूद में आती है तो उसकी कोई एक वजह होती है, बगैर वजह के कोई शे वजूद में नहीं आती है। जैसे कि मैंने कुछ एक किताब बनाई, किताब छापी लिखी, तो मेरा वजूद था इसलिए ये मेरी वजह से किताब वजूद में आई, इसलिए पूरी कायनात में हर चीज़ का कोई ना कोई बाई से वजूद है। ये चीज़ मंतिक में है कि कुछ वजह होगी तो कुछ चीज़ वजूद में आएगी। अब इसी मंतिक पर कुरान ने बहस करी और कहा है कि जब हर चीज़ के लिए एक वजूद का होना ज़रूरी है, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो मालूम पड़ता कि एक चीज़ आखिरी में इंतहा है कि हर चीज़ के आगे उसके उसकी वजह क्या थी, तो मालूम पड़ता है हम एक मुकाम पर जाकर रुक जाते हैं कि इसका वजूद किसने करा। तो जब हमको मालूम कि हर चीज़ के वजूद के लिए एक वजह चाहिए तो मालूम पड़ता कि हाँ एक वजह जो जब आखिरी इंतहा में पहुँचते हैं तो खुदा की ज़ात मालूम पड़ती कि हाँ इसके पीछे भी कुछ वजह होगी, जो वो वजह खुदा करीम है। कायनात के बनने के पीछे भी कोई वजह होगी जो खुदा करीम है, वो वजह है खुदा करीम के जिसको जो खुद में गनी है, खुद में हय्यू क़य्यूम है कि उसको पैदा करने वाला नहीं है। हम मंतिक से समझ में आता है इस बात को कि वो एक ऐसी वजह है कि वो खुद के लिए काफ़ी है, वो जो आखिरी जो वजह है वो खुद के लिए काफ़ी है, उसको पैदा करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हर चीज़ के लिए वजह चाहिए। तो जो खुदा करीम जो है वो आखिरी वजह है जिसको जो कि सेल्फ सफिशियंट है, जिसको खल्क नहीं किया सकता, क्योंकि ये मंतिक का सवाल है कि एक हर चीज़ के लिए वजह होती है तो खुदा करीम आखिरी वजह है। अब वो आखिरी वजह की बात आगे चलती है, आगे जितने लोग बहस करते हैं कि इस दुनिया के अंदर फिर कुछ अच्छाइयाँ भी हैं बुराइयाँ भी हैं, क्या फिर ये कैसा गार्ड है कि उसकी उसमें अच्छाइयाँ भी दुनिया में अच्छाई भी पैदा हुई हुई है और बुराइयाँ भी पैदा हुई हुई है, लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। तो उसकी बहस मिजान ने बड़ी खूबसूरत करी है, अल्लाह ने हर चीज़ को खल्क कर दिया, तवज्जो दें, अल्लाह ने हर चीज़ को खल्क कर दिया, वो खालिक है, ठीक है ना। लेकिन जैसे कि एक मिसाल के तौर पर एक कोई भी चीज़ है जैसे है उसका एक वजूद होता है जो हमारा वजूद है, अल्लाह ने हमारा खल्क, लेकिन एक चीज़ हमारे अंदर होती है हमारे खुद की ज़ात और हमारी एक शख्सियत होती है, उस शख्सियत के लिए हम जिम्मेदार हैं, हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं, हम हिदायत लेते कि नहीं लेते हैं, ये हमारी अल्लाह ने हम पे छोड़ा है कि हम किस तरीके से हमारी ज़िंदगी को सोसाइटी के अंदर बसर करते हैं, और उससे हम या तो आलिम बन जाते हैं या हम बन जाते हैं कातिल। ये जो चीज़ बुराई है जो सामने आई है इसमें हमारी ज़ात शामिल है, इसमें अल्लाह ने तो खल सबको करा था। तो इस तरह से कोई कहे कि ये कैसा खुदा है कि अच्छाई है बुराई है, तो हर अच्छाई उसकी तरफ जाती है और बुराई जो जाती है हमारी तरफ जाती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मिर्ज़ा ने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है कि या तो आप शादी कर लो या उसके बरखिलाफ़ है एडल्टरी, जिना,
शादी का जो एक्ट है और जिना का जो एक्ट है वो एक एक्ट है बायोलॉजिकली, लेकिन उसकी दोनों की फितरतें बदल जाती हैं। अब शादी अल्लाह ने कहा कि हाँ आदमी होकर मिलाप होगा तो ये एक तरह का अमल है, अब अमल का रहे तो शादियां बदल दो या आप उसको अडल्टरी में बदल दो। अब अडल्टरी करोगे तो बुराई हो गई है, ये आपका फेल है, अल्लाह का फेल तो नहीं था ना, ये आपका फेल था ये फेल। या जैसे कि पिस्तौल है गन है, अभी पिस्तौल गन या तो आपने आपने आपको डिफेंड कर लो, अल्लाह ने अकल दी आपने बना ली पिस्तौल, या आप किसी को जाके चोरी चकारी में कत्ल कर दो, ये आपका फेल है। इसमें आप इस तरह से कहो कि ये दुनिया में बुराई है क्यों, तो बुराई का जिम्मेदार इंसान खुद है, इसमें अल्लाह का ये अल्लाह का फेल नहीं है। दूसरा ये कि हर चीज को अल्लाह ने खल करा है, लेकिन ना ही खल करा है बल्कि उसको मेंटेन भी अल्लाह ने करा है, ये दूसरी फिक्र है। क्या मेंटेन करा अल्लाह ने कि हर चीज फना होगी सिवा अल्लाह की जात के, अगर ये अल्लाह के हाथ में नहीं होता और चीज से खुद शे के हाथ में होता कि मैं फना हूं कि नहीं हूं, तो कोई भी शे फना होने को तैयार नहीं थी, खुद को तो वो फना नहीं करेगी। इसका मतलब ये कि कोई ताकत है जो उसको फना करेगी, वरना हर आदमी अपने अगर मेरे अख्तियार में होता तो मैं तो जीता रहता, मैं अगला साल जीता, लेकिन मेरे अख्तियार में कुछ भी नहीं, अल्लाह के अख्तियार में। कायनात की हर चीज फना होने वाली, क्योंकि वो उसका खालिक वो है, वरना अगर शेख के हाथ में चीज दे दी जाती वो कभी फना नहीं होती। हर चीज का अंदाजा भी खुदा ने ठहराया है और हर चीज की बाजगंज भी उसी की तरफ है, हर चीज उसकी तरफ तेजी से लौट के जा रही है, मतलब चौ तरफ से अल्लाह का आता है, खाली को कुल्ल शे वो जो, और हर चीज पे उसे इल्म है, हर चीज पे वो कादिर मुतलक है। हमने आयत पढ़ी थी कि अल्लाह सुब्हान अल्लाह ने रात को सुकून के लिए बनाया है, लेकिन रात तो सुकून की बनी है, अल्लाह सुब्हान अल्लाह ने बनाई थी, लेकिन जो 10 मुहर्रम की रात थी वो बनी हाशिम के बच्चों के लिए सुकून की रात नहीं थी। अली असगर प्यास से तड़प रहे थे, सकीना प्यास से तड़प रही थी, बनी हाशिम के बच्चे रो रहे थे, हाय प्यास हाय प्यास हाय प्यास। देखें एक तरफ तो ये है कि एक तरफ ये थे अशकिया, एक तरफ इमाम हुसैन थे, ये जो अशकिया थे ये दुनिया वाले थे, इमाम हुसैन को एक फिक्र लगी हुई थी। अब इमाम हुसैन जिस फिक्र में आए थे करबला, उनकी फिक्र यह थी जो उन्होंने पहली आयत पढ़ी थी, वलक जितुमना फुरादा कमा खलकुम अव्वल मरतुम, हमने हर एक को जिस तरह पैदा है अकेला अकेला अल्लाह के पास आएगा। मौला हुसैन को इंसानियत की फिक्र थी, मौला हुसैन को मुसलमानों की फिक्र थी कि किस तरीके से अल्लाह के सामने हाजिर और नाजिर होंगे। अरे उनको खौफ था कि ये उम्मत बहक कर जब अल्लाह के पास हाजिर हो तो दीन छोड़कर नहीं आती हो, दीन के साथ आए। मौला ने कहा कि मेरे टुकड़े हो जाए लेकिन मैं अमर बिन मारूफ करूंगा, नहे मुनकर करूंगा, दीन की इस्लाह करूंगा। क्यों करूंगा? क्यों हर आदमी अकेला अकेला जाएगा अल्लाह सुब्हान अल्लाह के पास। मौला हुसैन की जिंदगी खुद शिफात थी, मौला हुसैन की जिंदगी शिफात जब है, जब हम कहें लब्बैक या हुसैन, इमाम हुसैन रास्ते पे चले तो वो शिफात हैं। अरे अरे आप सोचेंगे ज़ालिकुम अल्लाह रब्बुकुम, जो हमने आयत पढ़ी कि इन्हीं औसाफ का मालिक खुदा है, अरे यजीद को मालूम न था कि उसकी जंग किससे हो रही है? उसकी जंग उससे हो रही थी जो अली का बेटा था, जो अली का बेटा था और इमाम सज्जाद का वालिद था, इतनी ताकत का मालिक था। अरे ज़ालिकुम अल्लाह रब्बुकुम की मिसाल इमाम हुसैन अपने शहादत से पहले दुआ अरफा में दे दी, दुआ अरफा में बताया उन्होंने कि ज़ालिकुम अल्लाह रब्बुकुम किसको कहते हैं, ये मौसा वाला खुदा बता कर चले गए। अरे उन्होंने बताया हुज्जत खुदा थे, हुज्जत खुदा थे, हमने आयत पढ़ी फाबदु, तो उनकी उसकी इबादत करो। इमाम हुसैन ने इबादत करी, इस तरह करी कि उन्होंने सर सजदे में रख दिया और खंजर चल गया।